ஓம் சாந்தி. ஆஜ சந்தியா வேலே ஹம்னே பஹத் சுந்தர் யோக அப்யாஸ் கா ஆனந்த் லியா ஔர் உசி பாத் கோ ஆகே கண்டினியூ கர்த்தே ஹுவே ஹமாரே பீச் இஸ் சமய பதாரே ஹேன் ஆதரணீய ராஜயோகி சூர்யபாய் ஜி. ஆப் 1968 மே இஸ் ஜான் மே ஆயே ஔர் 1969 சே சமர்ப்பித் ரூப் சே சேவாயே தே ரஹே ஹேன். ஆப்கோ விசேஷ யோக மே ருச்சி ஹோனே கே காரண் யோக கே ப்ரதி கஹராய் சே சிந்தன் एवं प्रयोग करते हैं और अनेकों को योग के बारे में विशेष मार्गदर्शन भी करते हैं. आपका टीवी में एक विशेष प्रसिद्ध प्रोग्राम आता है समाधान, जिसमें आप अनेकों को अपनी समस्याओं का योग युक्त समाधान बताते हैं. आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर भ्रमण कर अनेका अनेक लोगों को योग युक्त जीवन कैसे बिताया जाए इसके बारे में मार्गदर्शन किया है. आप यहाँ के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक हैं. इस परिसर में ज्ञान योग के साथ साथ आप ब्रह्मा भोजन का भी आनंद ले रहे हो. तो ब्रह्मा कुमारीज के तीनों कॉम्प्लेक्स शांतिवन परिसर, ज्ञान सरोवर एवं पांडव भवन के भोलेनाथ भंडारे के आप इंचार्ज हैं और अपनी सेवाएं बड़ी योग युक्त रूप से दे रहे हैं, जिसका आप आनंद भी ले रहे हो. आदरणीय सूर्य भाई के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी. ज्ञान योग की आप हो खान, रुद्र यज्ञ की आप हो शान, शिव पिता की प्यारी संतान, इस विश्व में आप हो महान, इस विश्व में आप हो महान. इस समय आदरणीय भ्राता जी हमें आंतरिक शक्तियों का संतुलन कैसे रखे इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे आदरणीय सूर्य भाई जी. मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि आपका गुलदस्ता और बेज के साथ स्वागत करें. ऑप्शन
गुलदस्ता ही दे. ओम शांति. आप सभी को यहाँ बहुत आनंद आ रहा होगा, आ रहा है. सभी महात्माएं भी खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं. आज हमारी सभा की शोभा आप सबके होने से बहुत बढ़ गई है. कुछ मुस्लिम भाई भी दिखाई दे रहे हैं और सरदार भाई भी. वैरायटी आत्माओं का ये गुलदस्ता संसार के लिए भी बड़ा आदर्श है. आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो सभी के लिए परम आवश्यक है, चाहे वो साधनाओं के मार्ग पर आगे चल रहे हों, चाहे गृहस्थ में रह रहे हों, चाहे किसी विशेष धर्म के किसी पद पर कार्यरत हों. आज संसार को बहुत जरूरत है ईश्वरीय शक्तियों की. आप सब यहाँ आकर महसूस कर रहे होंगे कि भौतिकता की इस भागदौड़ में, भौतिकता के विकास में मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जाता है. क्या समझती हैं हमारी माताएं, ठीक बात है या नहीं? मैं केवल लेक्चर नहीं करूंगा. भूलता जाता है मनुष्य अपनी शक्तियों को, जबकि मनुष्य के मन में बहुत ज्यादा शक्तियां विद्यमान हैं. सभी को ये मालूम होना चाहिए कि शक्तियों का वास है हमारा मन. कहां रहती हैं शक्तियां? मन में. हम कभी बहुत शक्तिशाली थे और शक्तिशाली मनुष्य की पहचान होती है वो विभिन्न परिस्थितियों में अपनी मनोस्थिति को शांत रख सकता है। जिसको क्रोध आता हो वो शक्तिशाली नहीं, जो मनोविकारों के वश होता हो वो भी शक्तिशाली नहीं, जो छोटी सी परिस्थिति आने पर विचलित हो जाता हो वो भी शक्तिशाली नहीं। शक्तिशाली वो है जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत बनाए रखे, जिसके पास विशाल ज्ञान का भंडार हो, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने विवेक को दिव्य बना लिया हो और अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम को भी पहचान कर उस पर विजय प्राप्त कर ली हो। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ के वातावरण में क्या क्या है, आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा होगा। मुझे याद आ गई एक बात, कुछ ही साल पहले ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक महात्मा कहीं से आए और उन्होंने जाते समय एक बहुत सुंदर कमेंट दिया कि क्या आप मुझे यहाँ पर 6 मास रहने दे सकते हो। अब उनको बताया, भाई महात्मा जी ये प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार, एक प्रोग्राम पूरा हुआ 2 दिन के बाद दूसरा है, एकोमोडेशन पूरा हो जाता है। उनसे पूछा क्यों आपको यहाँ रहने की इच्छा है, तो देखिए उनका सुंदर उत्तर। उन्होंने कहा जिस लक्ष्य के लिए मैंने गृह त्याग किया था, जिस लक्ष्य को लेकर मैं इस जीवन में आगे बढ़ा था, कुछ साधनाएं करना चाहता था, लेकिन मैं एकाग्र नहीं हो पाया। मैं 3 दिन यहाँ रहा, मेरा मन और मेरी बुद्धि पूर्णतया एकाग्र हो गई। अगर मुझे यहाँ 6 मास रहने को मिल जाए तो मेरे जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाएगा, मेरा त्याग मेरा संन्यास सफल हो जाएगा। तो वास्तव में ये ऐसा स्थान है जहाँ ईश्वरीय वाइब्रेशंस चारों ओर फैले हुए हैं, जहाँ प्रभु प्रेम की तरंगों से सारा वातावरण तरंगित है, जहाँ आते ही मनुष्य के मन के तनाव नष्ट हो जाते हैं। एक और छोटी सी अनुभव की बात बताऊं, ऐसे ही एक प्रोग्राम में जो वकील और जजों का प्रोग्राम था, साउथ से, साउथ में एक जगह विजयवाड़ा है, 4 मजिस्ट्रेट आए थे, वो तहमदी पहनते हैं, पता कुछ चलता नहीं, सिंपल रहते हैं। मुझे जब आए गेट पर मिले, मुझसे पूछा कहाँ जाना है, मैंने बता दिया। जब वो भोजन पर आए दोपहर में तो भी मैं ही मिल गया, उन्हें कहा भोजन कहाँ है, मैंने कहा कि आप सवेरे मिले थे ना मुझे, आपका परिचय तो दे दो। तो कोई एडिशनल सेशन जज था, कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, 2 मजिस्ट्रेट थे। तो मैंने कहा यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, अभी तक कोई क्लास नहीं हुई थी, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, वो सवेरे आए थे, दोपहर की ये बात है। उन्होंने क्या उत्तर दिया, कहा जब हम सवेरे आपसे मिले थे तो हमारा मन बोझिल था, कुछ अनचाहा तनाव हमें सुखी नहीं होने दे रहा था, और इन 4-5 घंटों में हमें ऐसा लगा है किसी ने हमारा तनाव जैसे खींच कर बाहर निकाल दिया हो, हम बहुत शांत और रिलैक्स हो गए हैं। तो ये वाइब्रेशंस का प्रभाव है, और वाइब्रेशंस कौन बनाता है, हम सब, हमारी वृत्ति से वाइब्रेशंस का निर्माण होता है। हम जो कुछ सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। मैं इस सेशन को बहुत इम्पोर्टेंट रूप देना चाहता हूँ, केवल भाषण नहीं, लेकिन ऐसी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आपको हर जगह काम आए, जीवन की यात्रा को जो सुखद करें। जीवन के इस खेल में यदि हार जीत का सामना करना पड़े, यदि सुख दुख आ जाए, यदि मान अपमान हमें फेस करना पड़े, तो हम बहुत अच्छी मनोस्थिति कायम रख सकें। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, उस कहानी से आप सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन मैं उसका स्पिरिचुअल मीनिंग आपके सामने रखता हूँ। आप सबने सुना है, महाभारत का वृतांत है कि युधिष्ठिर को एक बार झूठ बोलने के रिटर्न में 5 मिनट का नरक भी मिला था। देवदूत युधिष्ठिर को पहले नरक में ले गए, 5 मिनट पूरे हो गए, देवदूतों ने कहा महाराज चलिए। वो चलने लगे तो नरक के निवासियों ने आवाज लगाई, महाराज हमें छोड़कर मत जाओ। उन्होंने पूछा क्यों? बस यही रहस्य की बात है। नरक निवासियों की ओर से उत्तर आया कि आपके यहां 5 मिनट खड़े रहने से हमारी नरक की पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। सोच लो क्यों? क्यों? जिस घर में एक महान आत्मा का वास हो, जिस स्थान पर एक महान पुरुष रहता हो, जिस घर में एक पवित्र आत्मा रहती हो, जिस घर में एक योगी रहते हो, जिस घर में एक बहुत अच्छा व्यक्ति रहता हो, उनके वाइब्रेशन से उस घर में सदा सुख शांति रहती है। और हमारे देश में करोड़ों महात्माएं, हमारे देश में महान पुरुषों की कोई कमी नहीं है। हमारा देश सबसे महान रहा है, ये विश्व का गुरु रहा है। और आप सभी ने ये खुशखबरियां सुन ली होगी, कुछ ही वर्षों में भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि धारण कर लेगा, क्योंकि यहाँ की महान आत्माओं के वाइब्रेशन से सारे देश में श्रेष्ठ चरित्र की, पवित्रता की, अलौकिक प्रेम की एक गंगा बह जाएगी। और सभी के मन जब दूषित हो चुके हैं, पवित्रता की ओर अग्रसर होंगे। तो ये काम हम सबको, आप सबको करना है। मैं तो आप सबको कहूंगा, जो भी धर्म प्रेमी लोग हमारे देश में हैं, जो अपने जीवन को धर्म से बहुत घनिष्ठता से जोड़े हुए हैं, उन्हें ध्यान से सुन लेंगे, अपने जीवन को धर्म का स्वरूप बना देना चाहिए। हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता बहुत सुंदर ग्रंथ है, हमारे पास वेद बहुत प्राचीन ज्ञान के ग्रंथ हैं, और सभी धर्मों में गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं, कुरान शरीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन अगर वो केवल किताबों में रह जाएं, अगर वो केवल ग्रंथों में रह जाएं, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हमारा जीवन हमारे धर्म ग्रंथों का स्वरूप बन जाए तो ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। और यही काम सबको करना है। बोलो तैयार हैं आप इसके लिए?
तैयार।
गर्दन धीरे हिल रही है पीछे वालों की, आप तो बड़ी उमंग में हैं महाराज। तैयार हैं? धर्म का स्वरूप देखिए, आज तक तो कहा जाता था, देखो बच्चा बोल रहा है, रिलीजन इज माइट, धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। पर धर्म में शक्ति तभी आती है जब मनुष्य का जीवन धर्म का स्वरूप बन जाता है। अगर धर्म केवल पूजन तक, पाठ तक, कीर्तनों तक सीमित हो जाता है तो उस धर्म में ताकत नहीं होती है। तो आओ हम सभी एक संकल्प करें, हमें धर्म का स्वरूप जीवन को बनाकर इस भारत को फिर से सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाना है। मैं जिस चीज की आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं वो है मन की शक्तियां, अलौकिक शक्तियां। आज अनेक मनुष्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अगर उसके पास धन की शक्ति है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। किसी के पास कोई सत्ता है, कोई पावर है, कोई बड़ा ऑफिसर है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कहीं लोग उसका सदुपयोग करते हैं और कोई दूसरों को कष्ट देने में अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। हमारी ईश्वरीय सत्ता जन कल्याण के लिए है। हमारी ईश्वरीय शक्तियां आत्मा को पावन बनाने के लिए हैं। हमारी ये शक्तियां सभी मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। इस ओर हमें शक्ति को डाइवर्ट करना है। आप सभी को ये मालूम हो गया होगा शक्तियां हमें कहां से मिलती हैं? ठीक है ना। एक ही सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, शक्तियों का परम स्रोत, शक्तियां वहीं से मिलेंगी, मांगने से नहीं। हे भगवान मुझे शक्ति दो, वो दे देता है थोड़ी सी मुट्ठी भर, उससे काम नहीं चलेगा। सर्वशक्तिवान की समस्त शक्तियों को अगर हमें प्राप्त करना है तो उससे अपना बुद्धि योग जोड़ना ही होगा। हमने ईश्वरीय ज्ञान में प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर बात सीखी थी, वो आप सबके सामने भी रखना चाहता हूँ। ये बात हमारे योग दर्शन में भी है, ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भी है और ग्रंथों में भी है। बुद्धि को स्थिर करना ही तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। जो मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर ले वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। लेकिन अगर किसी ने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया हो लेकिन वो अपनी बुद्धि को स्थिर न कर पाता हो तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसके पास संपूर्ण विवेक है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। तो हमारे संपूर्ण ज्ञान की पहचान है बुद्धि और मन को स्थिर कर देना, इस पर आप सभी अपने विवेक को तोलना। मैंने भी अपने जीवन में एक बहुत सुंदर संकल्प रखा था, बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत रख सके। बहुत काम आई मुझे बात। बुद्धिमान वो नहीं जो चारों ओर देखकर सोचता ही रहे। बुद्धिमान वो जो अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा दे दे, जो अपनी सोच को अपने लक्ष्य की ओर ले चले, जो अपनी सोच को बहुत श्रेष्ठ बना ले। मुझे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक बहुत प्रिय है, वो सबके लिए है। कोई ये न सोचे कि श्रीमद् भगवत गीता तो हिंदुओं का शास्त्र है, हमारा इससे क्या लेना देना। ये श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी सुंदर ज्ञान की गीता है जो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए बहुत कल्याणकारी और उपयोगी है। क्या कहा है उसमें, हे अर्जुन, जो मनुष्य, जो योगी, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव है वो योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। जो योग अभ्यास करते हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे, जिस योगी ने अपने मन को पूरी तरह शांत कर दिया हो संकल्पों का अभाव, उसके द्वारा संसार में बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फैलते हैं जो संसार में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो संसार में पवित्रता का साम्राज्य स्थापित करते हैं, जो मनुष्य को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं। मैंने बहुत साल पहले एक चीज महसूस कर ली थी। एक युवक मेरे पास आता था अपने माँ बाप के साथ और वो मुझे कहता था, क्या कोई ऐसी विधि है कि सारे संसार का संपूर्ण ज्ञान मेरी बुद्धि में आ जाए। मैंने उसे कहा, क्या करोगे, तुम पागल हो जाओगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मनुष्य को कंफ्यूज कर देती है। उतना ही ज्ञान जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है उतना ही ले लो तो काफी रहेगा। मैंने उसकी बात पे विचार किया और एक बात मेरी जानकारी में आ गई कि हर मनुष्य के ब्रेन में अनंत शक्तियां और अनंत ज्ञान का भंडार है। हमने उस पे लेयर चढ़ा दी हैं, परत चढ़ा दी हैं। किसने काम की, किसने क्रोध की, किसने अभिमान की, किसने पाप कर्मों की, ये लेयर्स हमारे ज्ञान को ढक चुकी हैं, हमारी शक्तियों को ढक चुकी हैं। आप सभी अपनी शक्तियों को पहचानें। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम कमजोर नहीं हैं। जैसे शेर का बच्चा क्या होता है, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे वाला कमजोर होंगे क्या? पहचान लें आप अपने को, उसकी बहुत शक्तियां हमारे अंदर भी हैं, बस हम उन्हें यूज करना सीख लें। कैसे यूज करेंगे? हम अपने मन में जो कुछ सोचते हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं। आप सभी ने देवी देवताओं और महापुरुषों के चारों ओर ओरा देखा होगा, प्रभामंडल, जिन महापुरुषों को साक्षात्कार होते हैं बड़े गुरुओं के, उनके चारों ओर भी प्रभामंडल नजर आता है। श्री कृष्ण के, श्री राम के, अनेक देवी देवताओं के चारों ओर किरणें फैलती हुई दिखाई जाती हैं। वो किरणें हमसे भी फैलती हैं। जो जितना पवित्र है, जो जितना शक्तिशाली है, जो जितनी पुण्य आत्मा है, उससे उतनी ही पावरफुल ये किरणें चारों ओर फैलकर एक शक्तिशाली आभा मंडल का निर्माण करती हैं। आप सभी ने श्री कृष्ण की कहानियों में देखा होगा कि श्री कृष्ण पालने में छोटा बच्चा सोया हुआ है, राक्षस कुछ फेंकता है उसको मारने के लिए और उसके चारों ओर प्रभामंडल घूमने लगता है और वो उसका हथियार उस प्रभामंडल से टकरा के बेकार हो जाता है। ये प्रभामंडल हमारे पास भी है, तो आप सभी ये याद रखेंगे, हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है, क्रिएटिव एनर्जी है। बहुत सुंदर बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं बचपन से ही दर्शनों की स्टडी करता था। जब मैं छोटा था, जब मुझे बहुत कम समझ में आता था, तो भी मैंने योग दर्शन खरीदा, सांख्य दर्शन खरीदा, श्रीमद् भगवत गीता खरीदी, पढ़ने लगा, देखने लगा इनमें क्या है। एक सुंदर चीज मुझे उसमें मिलती थी जिसका अर्थ मुझे तब समझ में नहीं आता था कि ये संसार का खेल, बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, सभी के लिए ये परम उपयोगी चीज है कि ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चलता है। सिंपल बात थी, प्रकृति ये शरीर है और पुरुष मैं आत्मा हूं, दोनों का मिलन हुआ है तो संसार का खेल चल रहा है। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। जैसे जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला, योग अभ्यास हुआ, बहुत चीजों की गहराई समझ में आई, तो क्या समझ में आया, सुन ले आप ध्यान से, आपके लिए परम उपयोगी चीज, जो कुछ हम सोचते हैं उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैले, प्रकृति में पहुंचे, प्रकृति में इन वाइब्रेशंस का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है और उसी चीज का निर्माण होके वो चीज वापिस हमारे पास आ जाती है। आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो वो जानते होंगे कि संसार की सभी चीजें दो तत्वों के मिलन से ही बनती हैं। नमक, पानी, ये सब दो तत्वों के मिलन से बनते हैं। ये संसार का खेल किस तरह चलता है आप अच्छी तरह जान लें, अपने से बात करें, मेरे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार मेरे संकल्प ही हैं। हमारे संकल्प ही चारों ओर फैलकर प्रकृति से जब रिएक्शन करते हैं वही चीज हमें वापस आ जाती है डबल होकर। मैंने बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता से एक बात नोट की, मेरा कांटेक्ट लोगों से बहुत ज्यादा रहता है, पर्सनल कांटेक्ट मैं देखता आता हूं। जिस मनुष्य की मनोस्थिति श्रेष्ठ है उसके सब काम सुलभ हैं। अगर वो स्टूडेंट है, उसको नौकरी चाहिए तो फटाफट अच्छी नौकरी मिल रही है, और जिसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, चाहे उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, उसे नौकरी मिलने में देर हो रही है। परिवारों में हम देखते हैं, बिजनेस वाले लोग हमसे मिलते हैं, जिनकी मनोस्थिति अच्छी है उनको बिजनेस में फटाफट सफलता मिल रही है, जिनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है वो कठिन मेहनत कर रहे हैं फिर भी विघ्नों की दीवारें आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। हमारी मनोस्थिति जितनी अच्छी होगी, वो संकल्प प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति में रिएक्ट करेंगे और वही चीजें हमारे पास वापिस आ जाएंगी। आप अपने जीवन को सुख शांति से भरने के लिए, अपने जीवन में सफलता का मार्ग खोलने के लिए, या जो महात्मा हमारे सामने बैठे हैं अपनी साधनाओं में संपूर्ण सफल होने के लिए इस सिद्धांत को अप्लाई करेंगे कि हमें अपनी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ बना लेनी है। अगर हम बहुत कुछ पाने के बाद भी चिड़चिड़े रहते हैं, अगर बहुत कुछ पाने के बाद भी हमारे जीवन में संतोष नहीं आता है, अगर बहुत अच्छा सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा चित चैन नहीं पा रहा है, तो समझ लें हम अपने मार्ग में कांटे बो रहे हैं। लेकिन अगर हम संतुष्ट हैं, अगर हम शांत हैं, अगर हमारे चित्त में सभी के लिए प्रेम भरा हुआ है, अगर हमारा मन शुभ भावनाओं से भरपूर है, तो हमारा मार्ग फूलों से बन जाता है। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आ गई अभी अभी। मैं आज ही हिमाचल से आया, मंडी में था दो दिन पहले, मंडी हिमाचल में है। एक युवक मेरे पास आया, देखिए बात कितनी सुंदर है, कहा कि मेरे राइट हैंड में यहां ऊपर मस्से होने लगे, बहुत सारे कील की तरह चुभते थे। 5 साल डॉक्टरों से इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा बहन ने बताया, हम लोग समाधान एक प्रोग्राम दे रहे हैं टीवी पर, समस्याएं आपकी समाधान हमारे, तो हम वो चीज बताई है बहुत जगह। इसने उस चीज को अप्लाई किया। क्या किया उसने? सवेरे उठकर एक संकल्प किया कि पूर्व जन्मों में मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं हाथ जोड़कर उन सब से क्षमा याचना करता हूं। 7 दिन किया सवेरे उठकर, और हैरानी की बात है कि 15 दिन में उसके मस्से बिना दवाइयों के स्वतः ही ठीक हो गए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। क्षमा कर देना और क्षमा याचना कर लेने से हमारा चित्त शांत हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जिन आत्माओं से हम हजारों साल से जुड़े हुए हैं, हमने उन्हें कष्ट पहुंचाया या उनके द्वारा हमें कष्ट पहुंचा, ये निगेटिव वाइब्रेशंस हमें परेशान करते ही हैं। मेरे पास बहुत केस आते हैं, शादी हुई, माताजी बोल रही है मेरी शादी को 25 साल हो गए, पहले दिन से हम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया था, आज तक झगड़ा ही नहीं मिट रहा है। ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। मैं छोटी छोटी बातें बताया करता हूं। मैंने कई प्रयोग कराए, खुद को चेंज कर लो, दूसरा व्यक्ति स्वतः ही चेंज हो जाएगा, ये हमारी शक्ति है। कितनी माताओं ने जब ये बात समझ ली कि मैं चेंज हो जाऊं, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। 2014 के ही कम से कम 10 बहुत सुंदर अनुभव मेरे पास हैं। माताजी ने अपने को शांत कर लिया, मैंने कह दिया तुम्हें बोलना ही नहीं है, चुप रहना, तुम्हारा पति गाली भी दे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना। 15-20 दिन में सब शांत हो गया। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी सहनशीलता में, बहुत बड़ी शक्ति है हमारी शांति में। इसलिए सभी अपने मन की शक्तियों को पहचान कर इस जीवन को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी के सामने अब एक बहुत सुंदर बात रखने जा रहा हूं, जो जब से मैंने ये बात जानी है, मेरा लक्ष्य है कि सारे संसार को ये बात मैं सिखा दूं, छोटे हैं या बड़े, गृहस्थी हैं या सन्यासी, बिजनेसमैन हैं या कोई ऑफिसर हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं या बिल्कुल नास्तिक हैं, सबके लिए समान रूप से ये बात लागू होगी। वो है मन की शक्तियों का एक बहुत सुंदर प्रयोग। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे पहले 10 मिनट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समय होता है। सभी ध्यान देंगे इस बात पर, जैसा हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हों, जैसा हम अपना भविष्य देखना चाहते हों, टीचर बहने बैठी हैं, जैसी हम अपनी सेवाएं देखना चाहते हों, वैसे ही संकल्प सवेरे 10 मिनटों में करें। क्यों ये 10 मिनट इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लोग इस सबकॉन्शियस माइंड को बहुत कम जानते हैं आजकल। योग दर्शन में जिसे चित्त कहा गया है, महात्माएं बैठे हैं चित्त, उसको ही इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। बिल्कुल ये सिंपल डेफिनेशन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मन की कई स्थितियां मनोवैज्ञानिकों ने आजकल वर्णन की है, आप में से किसी ने सुना हो, मैं जस्ट रिपीट करता हूं, फिर हम अपनी बात पर आएंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हायर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, हम इसमें से आज ले रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड चित्त। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्तियां होती हैं। हमारी शक्ति का 90% रहता है हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और सवेरे उठने पर 10 मिनट हमारा चित्त पूरी तरह एक्टिव है, जागृत है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आप ये जान लें कि हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा विजन की भाषा समझता है, चित्र। इसको जो हम चित्र दिखा दें उसे ये स्वीकार कर लेता है और वैसा ही करने में तत्पर हो जाता है। दूसरी बात, सवेरे के समय जब हमारा मन शांत होता है तब हम कुछ पावरफुल संकल्प कॉन्फिडेंस के साथ अपने अंतर्मन को दे दें, वो उन्हें स्वीकार कर लेगा और वैसा ही करेगा। एक्सपेरिमेंट सुना देता हूं, जो मैं कराता हूं आप अपने अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं अपने जीवन में। एक उदाहरण देता हूं। किसी एक इंजीनियर ने मुझे फोन किया कि मेरे 3 बॉस मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मैं इतना तंग हो गया हूं, मुझे इतना गुस्सा आता है उन पर कि मन करता है मैं मार डालूं। समझ गए ना आप कितनी सीरियस उसकी स्थिति होगी। मैंने उसे कहा, मारना तो सहज नहीं होता, इस संकल्प को तो मेरे साथ अभी छोड़ दो, एक अच्छा संकल्प करो। क्या करूं? मैंने उसे सिखाया, देखिए आप भी सीख ले बहुत अच्छी तरह, कि जब सवेरे आंख खोलो तो 7 बार याद करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमारे ईश्वरीय ज्ञान में इसको एक दूसरा शब्द दिया गया है, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 7 बार करके उन तीनों को आत्मा देखकर, वो आत्माएं हैं, ऑफिसर नहीं, आत्माएं हैं, ये संकल्प करना, ये तीनों मेरे गुड फ्रेंड हैं, अच्छे मित्र हैं। मैंने उसे कहा 21 दिन करना और 7 दिन के बाद मुझे बताना कुछ होने लगा या नहीं। और आपको ये बात सुन के खुशी होगी, 5वें दिन उसका फोन आ गया कि वो तीनों ही मेरे गुड फ्रेंड बन गए हैं। अब से इससे उन्हें निगेटिव एनर्जी जा रही थी, उनकी निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। अब इनसे उन्हें गुड एनर्जी जाने लगी तो वो इसके गुड फ्रेंड बन गए। मैं स्टूडेंट से बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कराता हूं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे मुझे पता नहीं, थोड़ी सी खराब बात थी। इसी एग्जाम में अभी एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि भाई मेरा मैथमेटिक्स का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन मुझे नंबर तो 85 तो कम से कम चाहिए, लेकिन मेरा पेपर तो ऐसा गया 55 ही आएंगे और मेरी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। मैं जो आगे पढ़ना चाहता हूँ, वो जो कंपटीशन देना चाहता हूँ, उसमें मुझे बहुत दिक्कत होगी, क्या कुछ किया जा सकता है? एग्जाम दिया ही था तो मैंने उसको ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की विधि सिखा दी कि रोज सवेरे उठते ही थोड़ा जल्दी उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैथमेटिक्स में तीनों पेपर में मेरे 85 मार्क्स आएंगे। उसने कहा ये कैसे होगा, पेपर तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा कैसा होता है, तुम कॉन्फिडेंस के साथ ये संकल्प करो और मार्कशीट देखो अभी से, जिसको मैंने विजन कहा कि मेरे मैथमेटिक्स में 85% मार्क्स आ गए हैं और एंजॉय करो उसको अभी से। और ये बहुत सुंदर चमत्कार की बात थी, उसके मैथमेटिक्स में 85 ही आए। ये सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे चित्त की बहुत बड़ी पावर है। मैं बीच में एक बात और आपको कह दूं, सब संसार में रहने वाले बैठे हैं, मैं 1-2-3 गुड बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको काम आएंगे जीवन में। जो कुछ भी आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, 1 साल का लक्ष्य, 6 मास का लक्ष्य, 5 साल का लक्ष्य, बिजनेस का लक्ष्य, पढ़ाई का लक्ष्य, अपने बच्चों को आप ये बात सिखा सकते हैं, कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया उसको सवेरे 3 बार लिख दो, सच्चे मन से 3 बार लिख दो। 7 दिन तक ऐसा लिखना। पहले दिन से क्या होगा, आपके ब्रेन की समस्त शक्तियां आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएंगी। केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, पूरा विश्वास। चाहे नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, स्टूडेंट्स के लिए कोई लक्ष्य हो, माताओं ने कोई लक्ष्य बनाया हो, उसको 3 बार लिखो सवेरे सच्चे मन से 7 दिन तक, और फिर देखना आपका, आपके ब्रेन की शक्ति आपको कैसे उस ओर ले चलती है। उदाहरण एक दे रहा हूं, मैंने कईयों से ये अभ्यास कराया, मुझे तो सदा खुश रहना है ये लक्ष्य है। ऐसे लोग जो खुश नहीं रहते जीवन में, मैंने उन्हें पक्का कराया कि संकल्प कर दो 6 मास मुझे खुश रहना है, कोई मरे या जिए। हिंदी में कहावत है ना, कोई मरे या जिए हम तो हलवा घोट के पिए। तो हलवा घोटने की बात नहीं है, कभी आप हलवा बनाने लगो किसी के मरने पर मैंने एक सिंपल ये बात सिखाई कि मुझे तो खुश रहना है, लिखो 3 बार, तो ब्रेन की सारी शक्तियां आपको खुश करने में लग जाएंगी। जहां निगेटिव बात आएंगी वहां भी एक सुंदर विचार आपके मन में आएगा और आप खुश रहेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है। जो योग के मार्ग पे चलते हैं, हमारे यहाँ सभी बहुत अच्छा राजयोग करते हैं, परमात्मा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करने की साधना। मैं उन्हें कहता हूं कि लिख दो कागज पर, मुझे रोज ये साधना 4 घंटे सफलतापूर्वक करनी है। तो ब्रेन की शक्तियां 4 घंटे एकाग्र करने में लग जाएंगी, एकजुट हो जाएंगी। दूसरी बात आपके सामने है, सभी याद रखेंगे। और मैं माताओं को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ये बात अवश्य सिखाएं, जो मनुष्य बातों को पकड़कर बैठ जाता है, बहुतों में आदत होती है ना, एक बात हो गई उसे पकड़े रखना, रोज उसी का वर्णन करना, उसे ही बोलना, उसी की चर्चा करना। जो व्यक्ति बातों को पकड़कर बैठता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग नेचर। एक तो उसको अनेक बीमारियां पकड़ लेती हैं, दूसरा वो आने वाले स्वर्णिम अवसरों को मिस कर देता है। आपको याद रखना है, ये संसार का खेल गतिमान है, ये चल रहा है। आप इसे अगर पकड़ेंगे तो आने वाली सुंदर चीजें रुक जाएंगी। सुन रहे हैं ना बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना बच्चे सभी। इसलिए कुछ भी बात हो उसे छोड़ते चलो, आगे बढ़ो, पूरा हुआ आगे बढ़ो, पकड़ के नहीं बैठना है। तीसरी बात, जो मनुष्य दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करता है, कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और हम इधर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते हों, तो हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते, हम उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। परिणामवश सफलता हमारे द्वार पर कभी नहीं आएगी। सब जो बड़े छोटे बैठे हैं, ध्यान से इस बात पर गौर कर लें। जीवन में चाहे फिल साधनाओं का हो, चाहे गृहस्थ का हो, हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करेंगे, सफलता हमारे द्वार पर कभी नहीं आएगी। और चौथी बात भी एक लाइन में बता देता हूं, नोट डाउन कर लें, कोई हमारा एक द्वार बंद कर दे, हम परेशान कभी न हो, दूसरा द्वार पहले ही खुला हुआ है। ध्यान देंगे, लोग संबंध बिगाड़ लेते हैं, इसने मेरे से ये कर दिया, इसने मेरे से ये कर दिया, कुछ नहीं कोई कर सकता। जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मनुष्य की अपनी कमजोरी ही उसे रोकती है। इसलिए कोई एक द्वार बंद कर दे, परेशान नहीं होंगे, दूसरा द्वार खुला है, उसकी तलाश कर लें। फिर से वहीं आ जाऊं, केवल 5 मिनट बचे हैं, ध्यान दें। फिर से मैंने आपको कहा, सवेरे उठते ही 10 मिनट सुंदर विचार करेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे उठते ही, टीवी नहीं देखेंगे। क्यों? अखबार आपके सामने आ गया कल सवेरे, आपने पढ़ा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, और आपका प्यार था कांग्रेस से, उदासी आ गई उठते ही, बिना मतलब प्रधानमंत्री कोई बना, उदास आप हो गए, कोई फायदा नहीं होगा। सवेरे जो कुछ आपने पढ़ा सुना वो सीधा सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, इसलिए सवेरे के 10-15 मिनट प्रभु चिंतन में। सिख बुजुर्ग भाई बैठे हैं आपके यहाँ भी, उठते ही पाठ किए जाते हैं ना, नाम स्मरण किया जाता है, हर धर्म में सवेरे उठते ही कुछ सुंदर आराधनाएं की जाती हैं, साधनाएं की जाती हैं। वो इसीलिए भारत में प्रचलित था क्योंकि सवेरे का ये समय मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है। देखो मैं एक उदाहरण बताऊं, एक व्यक्ति बहुत गरीब, वो सवेरे उठते भगवान को कहता था, हे प्रभु आपने मुझे गरीब क्यों बनाया, मैं बड़ा गरीब हूँ। अब ये संकल्प के मैं गरीब हूँ उसके सबकॉन्शियस माइंड में भरता गया और उसकी गरीबी कभी नहीं गई। मैं ऐसे लोगों को सिखाता हूँ, सवेरे उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करो और उसे धन्यवाद दो, हे प्रभु तुमने हमें सब कुछ दिया, आपका कोटि कोटि बार शुक्रिया। और देखो क्या होता है, कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, सब कुछ होते भी रोते ही रहते हैं। पड़ोसी के पास 2 कार हैं, हे प्रभु मुझे एक ही दी, मुझे छोटी सी मारुति दे दी, उसके पास तो बड़ी अच्छी अच्छी है, अपनी मारुति का भी सुख नहीं। तो क्या करेंगे, सवेरे उठते ही कुछ आपकी समझ में ना आए, अपने प्यारे परम पिता को गुड मॉर्निंग करके उसे धन्यवाद दिया करो, आपने मुझे सुंदर शरीर दिया, कितनी अच्छी बुद्धि दी, बहुत अच्छा मन दिया, खाने पीने को दिया, कितनी सुंदर प्रकृति दी है, आपको बारंबार शुक्रिया। सवेरे उठते ही अपने मन को आनंदित कर दें। जो व्यक्ति सवेरे उठते ही अपने मन को आनंद से भरपूर कर दे, उसका चित्त एकाग्र हो जाएगा और सवेरे के संकल्प उसके जीवन का, उसके भविष्य का, उसके कल का सुंदर निर्माण करेंगे। इसलिए यहाँ से आप सीख ले बहुत अच्छी तरह, हमें सवेरे उठकर क्या सोचना है। बस लास्ट में बता देता हूँ ये बात भी, कई लोग उठते ही सोचते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, भगवान कब इससे पीछा छूटेगा, तो समझे बढ़ गए। सवेरे उठते ही सोचो मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, वही होगा। बस इशारे में मैंने आपको ये बात कही, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं सवेरे के 10 मिनटों में उसका सुंदर चिंतन करें, वैसे ही संकल्प करें। स्टूडेंट्स को, इंटरव्यू देने वालों को मैं बहुत सिखाता हूँ, सवेरे उठते ही 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उन्हें सहज सफलता मिलती है। तो सभी अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ेंगे, तो जीवन आनंद का सागर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हम सभी 3 मिनट सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे और फील करेंगे उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाएं। चलो ऑलमाइटी से जुट जाएं, फील करें सर्वशक्तिवान से निकली हुई शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
सर्वशक्तिमान की संतान हो
तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कहता है महज इंसान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
सर्वशक्तिमान परमात्मा को साथ रख, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों को कार्य में लगाकर इस जीवन को कैसे सफल बनाया जाए उसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन अभी हम सभी ने आदरणीय सूर्य भाई से प्राप्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।